अम्मान के वजीर सेहत का दौरे तहरान, ईरान और अम्मान के दरमियान दवासाजी और इलाज मुआलजे के शोबे में वसी तआवुन का ऐलान। इराक में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए तशीराती मुहिम और पोलिंग के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का ऐलान। हिंदुस्तान के पार्लियामानी इंतखाबात का छठा मरहला, 11 रियासतों में 117 नशिस्तों के लिए पोलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम ओ मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूँ हाजिर साजिद रिज़वी। हमारी वेबसाइट है urdu.sehertv.ir और हमारा ईमेल है khabrein@sehertv.ir। लीजिए आप तफसील के साथ खबरें, मुलाहजा फरमाइए। इस्लामी जमहूरिया ईरान और अम्मान ने तिब्बी उमूर में बाहमी तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर सैयद हसन काजी ज़ादा हाशमी ने ईरान के तआवुन से अम्मान में दवाएं बनाने के कारखाने और जिस्मानी आज़ा की पेबंदकारी की सहूलतों और तमाम ज़रूरी वसाइल और तिब्बी आलात से आरास्ता एक बड़े हॉस्पिटल की तामीर की खबर दी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर सेहत डॉक्टर सैयद हसन काजी ज़ादा हाशमी ने अम्मान के वज़ीर सेहत अहमद बिन मोहम्मद बिन उबैदुस्सईदी और उनके हमरा तहरान के दौरे पर आए हुए वफद के साथ मुलाकात के मौके पर कहा कि अम्मान में एक हॉस्पिटल की तामीर और जिस्मानी आज़ा की पेवंदकारी ऐसे मुश्तरक इकदाम हैं जो निजी शोबे की मदद से अंजाम पाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों कौमों के बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तारीखी दोस्ताना रवाबित के पेश नज़र ईरान के निजी शोबे की हौसला अफजाई के ज़रिए अम्मान में एक बड़ा हस्पताल बनाया जा रहा है कि जिसमें ईरानी डॉक्टर और तिब्बी माहरीन अपनी खदमात पेश करेंगे। इस मौके पर अम्मान के वज़ीर सेहत अहमद बिन अब्दुस्सईदी ने कहा कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद तिब के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की और पेशरफ्त की है। उनका कहना था कि इलाके में पेश आने वाले वाक़यात और हवादिस के बावजूद अम्मान में इस्लामी जमहूरिया ईरान को हमेशा एहतराम की निगाह से देखा जाता रहा है। उनका कहना था कि 4 साल कबल के दौरे में उन्होंने जो कुछ ईरान में देखा था उसके मुकाबले में अब ईरान ने बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खलीज फ़ारस के मुल्कों को एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने का मशवरा दिया है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के महकमे के साबिक सरबराह तुर्की अल फैसल का यह बयान ऐसी हालत में सामने आया है कि इसराइल 200 से ज़्यादा एटमी वॉर हेड के साथ अरब मुल्कों के सरों पर मुसल्लत है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर गुफ्तगु करते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़तरा ज़ाहिर करते हुए तुर्की अल फैसल का कहना था कि अदम तवाज़ुन की सूरत में ईरान इलाके के अरब मुल्कों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तुर्की अल फैसल ने कुछ अरसा कबल जर्मन जरीदे स्पिगल से अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये मजाक खेज दावा भी किया था कि ईरान एटम बम बनाने के दर पे है। तुर्की अल फैसल का कहना था कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खलीज फ़ारस के तमाम अरब ममालिक को एटमी हथियारों की ख़रीदारी समेत तमाम मुमकिन रास्तों को अपने पेश नज़र रखना चाहिए। मुबसरीन का कहना है कि तुर्की अल फैसल के बयान को खलीज फ़ारस के मुल्कों का मौक़िफ़ नहीं समझना चाहिए। अम्मान, कुवैत और कतर का नुक्ते नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलबत्त इस तरह के बयान को कम अज़ कम उस फिक्र का तर्जुमान ज़रूर करार दिया जा सकता है कि जिसके तहत इसराइल और साम्राज्य ताकतें ईरान के पुरमन एटमी प्रोग्राम को ख़तरनाक ज़ाहिर करने में कोशा हैं। शाम में हुक्काम ने दहशतगर्दों और उनके हामियों के ख़िलाफ़ भरपूर इस्तकामत और पायदारी पर ज़ोर दिया है। इसी के साथ दहशतगर्द गुरों और उनके हामियों की हकीकत व माहियत को एक बार फिर बेनकाब किया है।
अक्वामे मुत्तहिदा में शाम के नुमाइंदे बशार जाफरी ने बताया है कि हालिया हफ्तों में शाम में 300 से ज्यादा गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बशार जाफरी ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के चेयरमैन के नाम अलग अलग खत इरसाल करके हाल ही में हलाक किए जाने वाले 300 गैर मुल्की दहशतगर्दों के नामों और उनके शहरियत से उन्हें आगाह किया है। बशार जाफरी ने बताया कि इनमें 90 दहशतगर्द सऊदी थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास हलाक होने वाले इन दहशतगर्दों की तस्वीरें और पासपोर्ट मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 30 दहशतगर्द कुवैती थे और 60 का ताल्लुक बरतानिया, जर्मनी, बोस्निया, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, बेल्जियम, तुर्की, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन, नीज मकदूनिया से था। बशार जाफरी ने कहा कि शाम में यूरोपीय दहशतगर्दों की मौजूदगी का खुद यूरोपीय हुकूमतों ने भी बारहा एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की हुकूमत ने सराहत के साथ एतराफ़ किया है कि शाम में फ्रांस के 500 दहशतगर्द बशार असद की हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। काबिले जिक्र है कि हुकूमत फ्रांस उन हुकूमतों में शामिल है जो शाम में सरगर्म दहशतगर्दों की भरपूर हिमायत करती हैं, लेकिन हुकूमत फ्रांस ने इसी के साथ इस तशवीश का भी इजहार किया है कि ये दहशतगर्द शाम से वापस आके खुद फ्रांस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दूसरी तरफ शाम के अवाम और हुकाम ने दहशतगर्दों के वजूद से मुल्क को मुकम्मल तौर पर पाक करने के अज़्म का बारहा ऐलान किया है। यह ऐसी हालत में है कि शाम की फ़ौज का मुल्क गिर ऑपरेशन जारी है जिसमें मगरिब और रजत पसंद हुकूमतों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों को मुसलसल हजीमत और नाकामी का सामना है। शाम के सदर बशार असद ने एक बार फिर शाम के खिलाफ साम्राज्य ताकतों और उनके इलाकाई जरखरीदों की साजिशों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के साए में किसी भी तरह के अमन समझौते पर गौर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शाम के अवाम और हुकूमत दहशतगर्दों को ख़त्म करने पर मुसम्मम है और दुनिया की कोई भी ताकत इस अज़्म की तकमील में रुकावट नहीं बन सकती। सदर बशार असद ने दमिश्क में शाम के उलमाए किराम और अइमे मसाजिद की एक जमात से मुलाकात में कहा कि शाम को इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा इत्तेहाद और एकजहती की ज़रूरत है और उलमाए किराम और अइमे मसाजिद इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने खतीबों उलमाए किराम और अइमे मसाजिद से अपील की कि अवाम को दुश्मनों की फितना अंगेजियों से आगाह करने और उनके दरमियान इत्तेहाद और एकजहती की तकवियत के लिए किसी भी कोशिश से दरेग न करें और इंशाअल्लाह अवाम का इत्तेहाद और एकजहती दुश्मनों की तमाम साजिशों की नाकामी के असबाब फराहम करेगी।
तुर्की ने आरामगाह सुलेमान शाह के तहफ़ के बहाने अपनी अफवाज को शाम में भेज दिया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की बर्री फौज के कमांडर खुलूसी आकार ने साफियों से बातचीत के दौरान दावा किया कि तुर्की की फ़ौज ने खिलाफ मामूल कोई काम अंजाम नहीं दिया है और शाम फौज भेजे जाने का मकसद सल्तनत उस्मानिया के बानी के मकबरे की हिफाजत करना है। तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब अर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा अहमद दाऊद ओगलू ने तुर्की की फ़ौज की शाम रवानगी और आरामगाह सुलेमान शाह की हिफाजत की खातिर सरहदों पर अपनी अफवाज की तैनाती से मुतालिक खबरों की तायद की है। तुर्की के अखबारी ज़राए के मुताबिक मकबरे के तहफ़ के लिए अनकरा ने फ़ौज के सैकड़ों सिपाहियों के अलावा मुतादी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शाम रवाना की हैं। शाम के ताल्लुक से तुर्की के हालिया पॉलिसी में सुलेमान शाह के मकबरे को फैसलाकुन हैसियत हासिल रही है। शाम में मौजूद दहशतगर्द अनासिर इस सिलसिले में तुर्की की हसासियत से फ़ायदा उठाते हुए तुर्की की फ़ौज को शाम में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं। तुर्की ने अपने अवाम की शदीद मुखालफत के बावजूद शाम के बहरान के आगाजी में सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर शामी दहशतगर्दों की मदद और हिमायत की है और इस वक्त शामी मुखालफीन और दहशतगर्द तुर्की की सरहदों पर मौजूद तरबियती कैंपों में तैनात हैं। इराक़ में 30 अप्रैल के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तशीराती मुहिम शबाब पर है। इसी के साथ हुकूमत ने इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई है।
इराक़ के वज़ीर दाखिला अदनान अल असदी ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मद्देनज़र रखे गए हैं ताकि अवाम मुतमिन हो के अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों में मुकम्मल हमाहंगी पाई जाती है। दूसरी तरफ इराक के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि पार्लिमानी इंतखाबात में शिरकत के लिए स्मार्ट कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि 1,80,00,000 से ज्यादा वोटर पोलिंग में हिस्सा लेंगे। इराक में तीसरे पार्लिमानी इंतखाबात में 30 अप्रैल को पोलिंग की तैयारी ऐसे आलम में की जा रही है कि बाज़ मगरबी ताकतों और इलाके की रजत पसंद हुकूमतों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों बिलखसूस अलकायदा और सऊदी हुकूमत से वाबस्ता दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम नामी दहशतगर्द गिरोह ने इंतखाबात में खलल डालने और वोटरों पर हमले करने का ऐलान किया है। इराकी पुलिस के ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 3 हफ्ते में इराक में दहशतगर्दाना हमलों में 490 अफराद मारे गए हैं। ये ऐसी हालत में है कि बहुत से इराकी शहरियों ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू में कहा है कि दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयाँ इंतखाबात में अवाम की मुशारकत पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। इराकी अवाम का कहना है कि कोई भी हादसा हो वो इंतखाबात में शिरकत करके अपना हक रायदही इस्तेमाल करने पर मुसम्मम है। इसी के साथ रिपोर्टों में बताया गया है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी धड़ों की तशहीराती मुहिम उरूज पर है। सड़कों और चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर और होर्डिंग देखे जा सकते हैं जिनके जरिए सियासी धड़ों ने अवाम से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की है। इसी के साथ इराक के बुजुर्ग उलमाए किराम और मराजे तकलीद के ऐलानात का मुशाहिदा भी किया जा सकता है जिनमें अवाम से कहा गया है कि वो अपना हक रायदही ضرور استعمال کریں۔ البتہ عراق کے بزرگ علماء کرام نے انتخابات میں مداخلت نہ کرنے اور اپنی غیر جانبداری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی دھڑے کی نہ مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حمایت کرتے ہیں، اور کس کو ووٹ دیں یہ فیصلہ خود عوام کو کرنا ہے، لیکن انہیں انتخابات میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ ادھر عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے اپنے ہفتے وار خطاب میں عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں مطمئن ہو کے حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر انتخابی حلقے میں امن و امان کی برقراری کے لیے کافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا، اور جمہوری عمل میں کسی بھی قسم کی خلل اندازی اور گڑبڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
تحریک حماس کے ایک سینئر رکن خلیل علیہ نے کہا ہے کہ نئی قومی حکومت کی صدارت محمود عباس کے پاس ہی رہے گی۔ اطلاعات کے مطابق خلیل الحیہ نے جمعرات کے روز الاقصی ٹی وی چینل پر گفتگو کے دوران کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے کریں گے اور 5 ہفتے میں حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بھی حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے نفاذ کی کوشش کرے گی۔ الحیہ نے انتخابات کے حوالے سے کہا کہ حماس اور پی ایل او نے پارلیمانی، صدارتی اور تنظیم آزادی فلسطین کے اندرونی الیکشن کے بیک وقت انعقاد سے متعلق اتفاق رائے کر لیا ہے کہ جس کے تحت محمود عباس دیگر فلسطینی گروہوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تحریک حماس کے سینئر رکن نے غرب اردن میں سیاسی بنیادوں پر جاری گرفتاریوں کے بارے میں کہا کہ یہ سلسلہ اب بند ہو جائے گا۔ ادھر تحریک الفتح کی مذاکراتی ٹیم کے رکن بسام الصالحی نے کہا ہے کہ قومی آشتی سے متعلق سمجھوتا ہو جانے کے بعد محمود عباس کو نئی حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ یوکرین میں حالات بدستور بحرانی ہیں۔ دونیسک اور لوگانسک کے مقامی رہنماؤں نے دونوں علاقوں میں یوکرین سے علیحدگی کے لیے 9 مئی تک ایک ساتھ ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ روس نے یوکرین میں 25 مئی کے مجوزہ صدارتی الیکشن پر اعتراض کیا ہے، جبکہ نیٹو نے ایک بار پھر روس سے یوکرین کے حالات معمول پر لانے میں تعاون کرنے پر زور دیا ہے۔
یوکرین میں حالات بدستور بحرانی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ماریو پول میونسپل کارپوریشن کی عمارت پر یوکرین کی پولیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کی عبوری حکومت کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ماریو پول کی میونسپل کارپوریشن کی عمارت روس نوازوں سے واپس لے لی گئی ہے۔ کیف کی حکومت نے اسی کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سلوویانسک کے نزدیک آرتی میفسک میں ایک فوجی چوکی پر روس نوازوں کے حملے میں ایک فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دونیسک اور لوگانسک کے مقامی رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ ان دونوں علاقوں میں یوکرین سے علیحدگی کے لیے 11 مئی تک ایک ساتھ ریفرینڈم ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ریفرینڈم میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والوں کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ وہ یوکرین سے علیحدگی چاہتے ہیں یا نہیں۔ دونیسک کے مقامی حکام کے مطابق اس ریفرینڈم میں 35 لاکھ سے زائد لوگوں کی شرکت کی توقع ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکومت یوکرین نے دونیسک میں مخالفین کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ادھر نیٹو نے ایک بار پھر روس سے یوکرین میں امن و امان کے قیام میں تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ نیٹو کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل الیگزینڈر ورشبو نے کہا ہے کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بقول ان کے روس ہے اور اس کو حالات کو معمول پر لانے میں تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کو 4 فریقی جنیوا سمجھوتے کے مطابق عمل کرتے ہوئے یوکرین میں غیر قانونی مسلح گروہوں کی مخالفت اور یوکرین کی سرحدوں سے اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلانا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس نے یوکرین کے بد امنی کے شکار مشرقی اور جنوبی شہروں میں روسی زبان بولنے والے مخالفین کے خلاف فوجی کارروائی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان علاقوں میں اس کے مفادات خطرے میں پڑے تو روس مداخلت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف نیٹو کے کمانڈر فلپ مارک بردلاؤ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے نزدیک روسی افواج کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوجی تمام وسائل سے لیس پوری طرح چوکسی کی حالت میں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حکم ملتے ہی مشرقی یوکرین پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ نے موجودہ حالات میں یوکرین میں صدارتی انتخابات کرائے جانے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے رشا ٹوڈے سے گفتگو میں کہا کہ مشرقی اور جنوبی یوکرین کے ساتھ کیف کے کسی سمجھوتے اور اتفاق رائے کے بغیر صدارتی الیکشن کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو یوکرین کے صدارتی الیکشن کو صرف اس وقت سرکاری طور پر تسلیم کرے گا جب یہ الیکشن ملک کے تمام علاقوں میں یکساں ماحول میں ایک جامع اور ہمہ گیر جمہوری عمل کے ذریعے انجام پائیں۔ उन्होंने कीएफ से मुतालबा किया है कि चार फरीकी जेनेवा समझौते पर अमल करे। उन्होंने कहा कि कीएफ को चाहिए कि इस मुआहदे पर अमल करते हुए पहले आइन में इसलाह करे। रूसी निजात बाशिंदों की हैसियत को तस्लीम करने के बारे में जो वादा उसने इस मुआहदे के तहत किया है उसको पूरा करे और ये यकीन हासिल करे कि तमाम इलाकों में अमन है, सबकी आवाज़ बराबर से सुनी जा रही है और सभी के लिए सियासी अमल में मुसावी मुशारकत का मौका फराहम हो गया है। यूक्रेन की हुकूमत ने 25 मई को सदारती इलेक्शन कराने का ऐलान किया है जबकि जनूबी और मशरकी इलाकों के अवाम और रहनुमाओं ने इंतखाबात को गैर कानूनी करार दिया है।
हिंदुस्तान में जमेरात को पार्लियामानी इंतखाबात के छठे मरहले में वोट डाले गए। हिंदुस्तान के पार्लियामानी इंतखाबात के छठे मरहले में जमेरात के रोज़ 11 रियासतों में 117 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। रिपोर्टों में बताया गया है कि छठे मरहले की पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ख़ासतौर पर उन इलाकों में सिक्योरिटी दस्तों की तादाद ज़्यादा नजर आई कि जहाँ माओनवाज़ दहशतगर्दों का असर ज़्यादा है। हिंदुस्तान के पार्लियामानी इंतखाबात के छठे मरहले में जिन रियासतों में पोलिंग हुई उनमें झारखंड, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका पांडिचेरी शामिल है। हिंदुस्तान के 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में इस मुल्क की तुलानी तरीन इंतखाबात हैं कि जो 9 मरहलों पर मुश्तमिल हैं। पहला मरहला 7 अप्रैल को अंजाम पाया और 9वें मरहले में 12 मई को पोलिंग होगी और 16 मई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अनंतनाग, पुलवामा पार्लियामानी नशिस्त के लिए भी पोलिंग हुई। तफसीली रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
पार्लियामानी इंतखाबात के छठे मरहले पर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अनंतनाग सीट पर जहां मजाहमती जमातों की अपील पर लोगों ने अमल किया, वहीं पर लोगों ने हिंद नवाज जमातों के हक में भी अपनी राय का इस्तेमाल किया।
रियासत जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से अनंतनाग पुलवामा हल्के की नशस्त के लिए आज वोट डालने मतलूब थे और हुकाम ने हालिया पंचायती मेम्बरान की हलाकत और मजाहमती जमातों की इलेक्शन बायकॉट कॉल को मद्देनजर रखते हुए हिफाज के गैर मामूली इंतजाम कर रखे थे। तमाम पोलिंग मराकज पर रियासती पुलिस के साथ साथ नीम फौजी दस्तों के एहलकार तैनात थे जबकि हसास इलाकों में फौज की भी मदद तलब कर ली गई थी। जनूबी कश्मीर के तमाम शहरी इलाकों में बेशतर पोलिंग मराकज पर मजाहमती जमातों की इलेक्शन बायकॉट अपील का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। जनूबी कश्मीर के पांपोर कस्बे में एक पोलिंग मरकज पर पोलिंग अफसर ने शहर आलमी नेटवर्क को बताया,
कोई कोई बीच में कोई कोई आ रहा है, कोई हाँ कोई कोई आ रहा है। ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त 11:30 बजे 4.5 घंटे हो गए पोलिंग को होते हुए 8 वोट पड़े हैं।
ताहम दिही इलाकों में लोग अच्छे खासे तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि मजमुई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही और इसका तनासुब भी हौसला अफजा रहा। इस दौरान मजामती जमातों ने कहा है कि इलेक्शन बायकॉट से रियासती हुकाम और मरकजी हुकाम की आंखें खुलनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि मजीद ताखीर किए बगैर मसले कश्मीर के हल के लिए अपनी आमादगी का इजहार करें।
वोट हमारा हक है, हमें वोट देना चाहिए, अपना वोट ज़ाया कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने देखना चाहिए कि बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको हम वोट देने के ख्वाहिश रखते हो, वो हमारे लिए आगे हमारे गांवों के मसले हल करे।
इस बीच जनूबी कश्मीर में मजामती जमातों की हड़ताल की कॉल से निजामी जिंदगी दरहम बरहम रहा। काबिल जिक्र है कि इस नशस्त पर हुकुमरान इत्तेहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग और हिजब इख्तलाफ की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सरबरा महबूबा मुफ्ती के दरमियान असल मुकाबला है। अगरचे इस हल्के में मजीद दर्जन भर उम्मीदवार भी मैदान में है, ताहम असल मुकाबला महबूब बेग और महबूबा मुफ्ती के दरमियान है।
हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से कैमरा मैन मुर्तजा रज़वी के साथ सिप्ते मोहम्मद हसन, आलमी नेटवर्क, श्रीनगर।
पाकिस्तान के साहली शहर कराची में एक बम धमाके में एक पुलिस अफसर समेत मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बम का धमाका, कि जिसे खुदकुश नौयत का बताया जा रहा है, पुरानी सब्जी मंडी में वाकई दर्जी की एक दुकान पर हुआ कि जिसके नतीजे में मौतल पुलिस इंस्पेक्टर शफीक तनोली समेत 5 अफराद हलाक हो गए। इस वाक में 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। बताया जाता है कि शफीक तनोली पर यह दूसरा खुदकुश हमला था, इससे कबल के खुदकुश हमले में वो बच गए थे। शफीक तनोली को मुबैना तौर पर एसएचओ से तनजुली के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्स की एक कार्रवाई में 23 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पिशावर से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई में जो बाड़मेर اور تیرہ کے مقام پر انجام پائی جنگی طیاروں نے دہشت گردوں کے کم از کم 6 ٹھکانوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں اسلام آباد کی سبزی منڈی اور 4 صدہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مذکورہ دونوں واقعات میں 130 سے زائد عام شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ تہران میں پاکستان کے سفیر کی رہائش گاہ پر یوم پاکستان کی تقریب سے بدھ کی رات منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی۔
یہ تقریب تہران میں پاکستان کے سفیر کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران میں نوروز کی چھٹیوں کی وجہ سے یوم پاکستان تہران میں 23 اپریل کو منایا گیا۔ پاکستان کے سفیر نور محمد جادمانی نے اس دن کی مناسبت سے ایران میں مقیم پاکستانی باشندوں اور دیگر ممالک کے سفرا کو اس دن کی مختصر تاریخ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی اور ان دو ممالک کو بہت قریبی دوست اور بھائی قرار دیا۔
قابل ذکر ہے کہ اس پروگرام میں پاکستانی اسکول کے طالب علموں نے پاکستانی قومی ترانے کے علاوہ ایرانی قومی ترانہ بھی پڑھ کے سنایا۔
پاکستان کے سفیر نے سحر عالمی نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے آئندہ دورے تہران کے اہداف پر بھی روشنی ڈالی۔
تو یہ بائی لیٹرل آفیشیل وزٹ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا، اور یہ جو ہمارے اچھے جو تعلقات ہیں اس کو ان کو مزید مستحکم کرے گا۔ جو دونوں ممالک کے جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور آگے چلنے کے لیے اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔
دوسری جانب انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک باہمی تعاون سے سرحدی مشکلات اور گیس پائپ لائن جیسے دیگر مشترکہ مسائل کو جلد از جلد حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
سید حسن زیدی، سحر عالمی نیٹ ورک، تہران۔
ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازت اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ملاحظہ کیجیے۔ عمان کے وزیر صحت کا دورہ تہران، ایران اور عمان کے درمیان دوا سازی اور علاج معالجے کے شعبے میں وسیع تر تعاون کا اعلان۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کی تشہیراتی مہم اور پولنگ کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا اعلان۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کا 6 مرحلہ، 11 ریاستوں میں 117 نشستوں کے لیے پولنگ۔ ناظرین، خبریں آپ نے ملاحظہ کی، تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور اس کے ساتھ کچھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔